कर्मकांड शिविर लेक्चर नंबर 18 प्रदेश बंध की चर्चा भी हमने नहीं की है, स्थिति बंध की बात हो गई है, प्रकृति बंध भी देखा था, ये विच्छित्ति वगैरह प्रकृति की हमने वो भी देखी थी। अब यहाँ अनुभाग किसको कहना, कर्म में जो फलदान शक्ति है उसको उसका अनुभाग कहते हैं। तो उसमें कुछ प्रकृतियाँ तो प्रशस्त है जिसको हम पुण्य प्रकृतियाँ कहते हैं, और कोई प्रकृतियाँ कैसी अप्रशस्त है। स्थिति में तो एक नियम बताया था, जहां संकल्प ज्यादा वहां स्थिति बड़ी, वो तीन आयु को छोड़कर, और जहां विशुद्धि ज्यादा वहां स्थिति कम। अनुभाग के प्रकरण में समान की बात करनी पड़ेगी, जहां विशुद्धि ज्यादा है वहां प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा है, जहां संकलेश ज्यादा है वहां अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग ज्यादा है। ख्याल में ये तो सिंपल बात है ना, पर हमें प्रशस्त है कि अप्रशस्त है इसको देखना है। तीव्र प्रशस्त जैसे वेदनी साता वेदनी का तीव्र अनुभाग कब होगा, अति विशुद्धि में, कहां पर, दसवें के अंदर। और ज्ञानावरण का वहां अनुभाग कैसे बनेगा, अति मंद। तो ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग वो प्रशस्त प्रकृति है, उसका तीव्र अनुभाग कहाँ बंधेगा, मिथ्या दृष्टि अति संकलेश में। नहीं समझे, जो अशुभ प्रकृति, अशुभ ने अप्रशस्त प्रकृतियां है, पाप प्रकृतियां है, जैसे सभी घाती कर्म पाप रूप है, तो उसका तीव्र अनुभाग कहाँ बंधेगा, मिथ्या दृष्टि को, तीव्र संकलेश में। और इनका यानी अप्रशस्त प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग कहाँ बंधेगा, जहां वो बनती रहती वहां वो विलास में, जहां कहीं भी उसकी बंधे विचित्ति होती है जो कहा बंधना रुक जाती है। अब प्रशस्त प्रकृतियों में क्या होगा, जहां विशुद्धि ज्यादा है वहां प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग भी ज्यादा है। स्थिति में तो हमें सबको इकट्ठा गिनते हैं, अब यहाँ क्या करना है, प्रशस्ति की बात अलग अप्रशस्ति की बात अलग। अप्रशस्त का अनुभाग कहाँ ज्यादा होगा, मिथ्या दृष्टि संकलेश वाला। प्रशस्त में अनुभाग कहाँ ज्यादा होगा, ऊपर ऊपर की गुणस्थान में जहां वो बनती रहती वहां। अभी यहां से उसकी चर्चा करेंगे। तो अनुभाग के प्रकरण में, स्थिति के प्रकरण में हमने क्या देखा था, आबादा छूट जाती है, फिर उसमें ऊपर एक एक निषेक बनता है, यानी उसमें वो निषेक में क्या दिखता है हमको, स्थिति कितनी है क्या है उसकी बात है। अब यहाँ हम अनुभाग के उसमें अनुभाग किसमें गिनते हैं, तो अविभाग प्रतिच्छेदों में गिनते हैं, वो उसका यूनिट है शक्ति का। किसका? कर्म की शक्ति की बात चल रही है। ज्ञान की जीव के गुणों की बात करेंगे तो उसके अपने अविभाग प्रतीक्षे भी नहीं। अभी यहाँ में कर्मों की बात चल रही है, तो कर्मों की शक्ति किसमें गिनेंगे? उसके अविभाग प्रतिच्छेदों में। तो ऐसी शक्ति प्रत्येक कर्म परमाणु में है, तो यहां एक एक कर्म परमाणु को वर्ग कहेंगे। क्यों? उसमें अपने अपने अविभाग प्रतिच्छेद है। अब जीव के प्रदेशों में जहां वहां वो सारे अधिष्ठानित कर्म पड़े थे, जिन जिन कर्मों में जहां कहीं भी पड़ा हो, जिसका जिसका अविभाग प्रतिच्छेद जिसमें कम से कम है, जिसको हम कहेंगे जघन्य अनुभाग है, उस सभी कर्मों का पर कर्म परमाणु को हम एक लाइन में लिखी। जैसे निषेक में हमने लाइन बनाई थी, पर वहां तो समान स्थिति वालों को एक लाइन में रखा था। अब यहाँ समान अविभाग प्रतिच्छेदों वालों को, समान अनुभाग वालों को एक लाइन में रखना है। जिनमें जिनमें मिनिमम अनुभाग है, ऐसे सभी परमाणुओं को एक लाइन में रखेंगे, उसको हम वर्गणा कहेंगे। एक परमाणु को वर्ग कहा, जिनमें जिनमें अविभाग प्रतिच्छेद मिनिमम है, यानी जघन्य अनुभाग है, ऐसे सभी परमाणुओं को एक लाइन में हम बताएंगे, उसको कहेंगे वर्गणा। उसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है, दूसरी वर्गणा, और एक ज्यादा है, तीसरी वर्गणा, एक एक से बढ़ते हुए अनंत वर्गणा, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ते हुए। फिर क्या होगा? बीच में ऐसी कोई वर्गणा नहीं होगी जो एक एक से बढ़ती हुई, तो क्या होगा? डायरेक्ट एकदम जो हमारी पहली वर्गणा थी उससे दुगुना अविभाग प्रतिच्छेद जिसमें है, वहां से फिर पहली दूसरी वर्गणा चालू हो जाती है। यानी नीचे की जितने वर्गणाओं के समूह को हम एक स्पर्धक कहेंगे। दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा कितनी है? पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा से दुगुनी है। आपको समझाने के लिए हम कहेंगे, पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा में प्रत्येक परमाणु में अविभाग प्रतिच्छेद 100 है। आपको समझाने के लिए हम 100 कहेंगे, होता तो अनंतों में। तो 100 वाली एक वर्गणा हुई, जिसमें 101 है वो दूसरी वर्गणा हुई, जिसमें 102 है तीसरी वर्गणा हुई। इस तरह से मान लेते ना, 100 से लेकर 120 तक वर्गणाएं हुई, इनका एक स्पर्धक हुआ। अभी यहां हमने 100 से शुरुआत की थी, अब 200 से लेकर शुरू करो, 200, 201, 202, 220 तक चली जाएगी।
100 से 200
बीच में कोई नहीं होती, बीच में होते ही नहीं, तभी तो दूसरा स्पर्धक कहलाता है। एक एक से बढ़ते हुए जहां तक है उतना एक स्पर्धक। अभी डायरेक्ट बीच में कुछ नहीं होता, फिर डायरेक्ट दो गुना जो परमाणु है उसका वो पहली वर्गणा, दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा, यानी 200, 201, 202 इस तरह से। ये मेरी अपने काल्पनिक फिगर है समझाने के।
100 से 120 तक लिया
कंटिन्यूस है, एक एक से बढ़ती हुई, एक एक उसमें एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता है, उसी को वर्गणा कहते हैं।
तो वो 199 तक
नहीं जाता है, 121 के बाद 199 तक कोई वर्गणा ही नहीं होती, ऐसी कोई परमाणु ही नहीं है बीच वाले अनुभाग वाले, ऐसा ही स्वरूप है।
यदि इमेजिन किया है कि होता ही
नहीं, ऐसा ही नहीं होता, होता ही नहीं,
इमेजिन किया होता
नहीं। ऐसा ही, क्योंकि वो अनंतों में कैसे समझाएंगे? अनंतों में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ा, ऐसी वर्गणाएं भी अनंत हुई, जिस वर्गणा में जाकर बीच में कोई नहीं होता भी। अभी एक एक से बढ़ने वाली वहां कोई प्रमाण नहीं है, अब डायरेक्ट पहले वाले अनंत से दुगुने, जैसे हमने 100 माना था तो डायरेक्ट 200 वाले प्रमाण होंगे वहां कुछ। हमने 120 तक माना था ना, 121, 122, 123 वाले कोई अनुभव वाले कोई परमाणु ही नहीं है सकता भी, सीधा 200 से, तो उसको कहेंगे दूसरा स्पर्धक।
तीसरा
300 से आगे,
320 तक,
हाँ 300, हमने कहा 20-20 हम मान लेते।
परमाणु
तो
परमाणु
की संख्या हीन होती है, जैसे निषेकों में होती है प्रतिवर्गणा हीन होती चली जाती है, उसकी भी वो अविभाग प्रतिच्छेद ऊपर एक एक से कम हो रहा है, सॉरी एक एक परसेंट बढ़ रहा है। ये वर्गणा की पूरी रचना अलग है, निषेकों की पूरी रचना अलग है। निषेकों में नीचे अविभाग कम है और ऊपर अधिक है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा हम पहले सुनते थे और बोलते भी थे, पंचलब्धि में लिखा भी था, वो हमने काट दिया उसके ऊपर। प्रत्येक निषेक में जगन्य से उत्कृष्ट तक अनुभव होता ही है, प्रत्येक निषेक में। जैसे स्कूल में हम बच्चों के 1, 2, 3, 4 नंबरिंग करेंगे, कहीं तो अल्फाबेटिकल के ABCD के उसके सरनेम के अनुसार करेंगे, अब मार्क के अनुसार नंबरिंग करेंगे तो जुदा होगा, और हाइट के अनुसार नंबरिंग करेंगे तो जुदा होगा। तो पहले के वहाँ कुछ कंसिडर नहीं कर, निषेक की पूरी रचना जुदी, और अनुभाग की वही परमाणु अनंत है, अनुभाग की अपेक्षा उसकी रचना पूरी जुदी दिखाएंगे, उसको हम वर्गणा और स्पर्धक कहेंगे। जब स्थिति की अपेक्षा बात की थी उन्हीं परमाणुओं को हम निषेक रूप से बताया था, अभी उसकी बात भूल जाओ, जब अनुभाग की बात करते हैं उन्हीं सारे परमाणुओं को अनुभाग की अपेक्षा अलग नंबरिंग करेंगे।
परमाणु में स्थिति भी है और फिर
अनुभाग भी है, हो सकता है कि जगन्य वाला जो अनुभाग है वो स्पर्धक ऊपर के परमाणु में पड़ा है या बीच वाले में पड़ा है, ऐसे वाले परमाणु सब जगह पड़े, जिसमें मिनिमम पॉसिबल अनुभाग है। कितने हैं इसे एक वर्गणा में परमाणु अनंत, वो अनंत परमाणु स्थिति की अपेक्षा कहाँ है, प्रत्येक निषेक में पड़े, और अनुभाग की अपेक्षा उत्कृष्ट वाले अनुभाग वाले वो कहाँ पड़े हैं, स्थिति की अपेक्षा प्रत्येक निषेक में पड़े। इवन डिस्ट्रीब्यूशन, वहां केवल स्थिति की अपेक्षा बात है और यहाँ केवल अनुभाग की अपेक्षा बात है। अगर निषेकों में हम नीचे जगन्य अनुभाग और ऊपर उत्कृष्ट अनुभाग करेंगे तो बात घटित नहीं होगी और ये आगम से विरुद्ध होगी। आगम में स्पष्ट रूप से लिखा है, ये लब्धि सारण में टोडरमल जी साहब ने भी लिखा है कि प्रत्येक निषेक में सभी अनुभाग के स्पर्धक होते हैं, प्रत्येक निषेक में सभी प्रकार के, यानी सभी टोटल निषेकों की बात, जितने टोटल एक समय प्रबद्ध परमाणु है उसको जब निषेक रचना की तो उसकी अलग बनी। अब उन्हीं सब परमाणुओं को अभी उनकी लाइन छोड़ दो, अभी उनकी स्पर्धक की अपेक्षा वर्गणा की अपेक्षा लाइन लगा, वो जुदी बनेगी। समझ में आते ना, अभी है ये बात सूक्ष्म, परंतु हम पहले ऐसा सुनते भी थे कि नीचे की जो निषेक है निषेक उसमें अनुभव कम है और जो बाद में खेलते हैं उसमें अनुभव ज्यादा है, परंतु वो सत्य नहीं है। हाँ, हमको ऐसा उदाहरण भी हम सुनते थे कि कप में दूध है या चाय जो बनाए शक्कर डाली हमने ऊपर से, तो पहला फीका लगा और बाद में मीठा लगा, तो बाद में आने वाले परमाणु में अनुभव ज्यादा आता है, ऐसा नहीं है। जो नीचे के हीन अनुभाग वाली जो वर्गणा है ना उसमें परमाणु की संख्या ज्यादा है, यानी अधिक परमाणु में अनुभाग कम है, फिर अनुभाग जहाँ बढ़ता है वहां परमाणु की संख्या कम है, यानी अनुभाग जैसे हमने निषेक में ऐसी रचना देखी ना, अनुभाग में वर्गणा की रचना इसी करेगी, निषेक तो असंख्यात बने सागरों की बने और अनुभाग में तो अनंत वर्गणा बनेगी, स्पर्धक ही अनंत बनेंगे और एक एक स्पर्धक में वर्गणा अनंत बनेगी और एक एक वर्गणा में परमाणु अनंत है, तो एक समय में कितने बांधते होंगे इसका जरा विचार करो। सभी जगन्य से उत्कृष्ट तक अनंत वर्गणा होगी, प्रत्येक निषेक में अनंत वर्गणा, तो एक एक निषेक में परमाणु भी उतने अनंत होंगे कि नहीं होंगे। उसी को वर्गणा कहेंगे ना, ऊपर की वर्गणा उसी को कहते हैं, वर्गणा अनुभाग की अपेक्षा ऊपर यानी उत्कृष्ट, नीचे यानी जगन्य, अनुभाग की अपेक्षा, उसमें स्थिति की कोई अपेक्षा अभी नहीं लगानी, यानी कोई भी अनुभाग वाला परमाणु किसी भी निषेक में पाया जाता है, यानी सब निषेकों में सभी अनुभाग वाले परमाणु पड़े ही है, नियम से पड़े। परमाणु तो जितने बंदे उतना निश्चित है, उसी में उसकी स्थिति की अपेक्षा रचना जुदी दिखाएंगे, अनुभाग की अपेक्षा जुदी दिखाएंगे, और प्रत्येक निषेक में अगर दिखना है तो प्रत्येक निषेक में कुछ जगन्य अनुभाग वाले स्पर्धक हैं और कुछ उत्कृष्ट अनुभाग वाले स्पर्धक हैं, उदय रूप में भी पड़े हैं, तो फिर उदय किसका कहलाएगा, जैसा जीव भाव करेगा वैसा उदय कहलाएगा, सारे स्पर्धक हनुमान हाथ जोड़कर खड़े हैं, आप जितना तीव्र कषाय करो हम आपके सामने खड़े हैं उदय में आने के लिए।
सब अनुभाग वाले अगर स्पर्धक है तो फिर हर किसी के उदय के अंदर एक सरका ही फिर तो फल आएगा,
नहीं आता है क्योंकि उसमें हीनाधिक वो बाकी जो जगत जी के और उत्कृष्ट और मध्यम रूप होकर भी उदय में आ सकते हैं। उदय किस रूप आता है उसका भी नियम है, उदय एक समय में वो चेंज होकर उदय में आते, जैसे हमने क्षोभ आपको समझाया था दूसरे निषेक में जो सर्वघाती रूप से पड़े थे वो उदय में आते आते देशघाती रूप होकर उदय में आ रहे, ऐसे ही तीव्र हो या मंद हो उदय के समय किस रूप अनुभव में उदय में आते हैं, जीव की तरफ से कहेंगे तो जीव किस रूप से परिणत है वैसा उदय कहलाएगा, उदय की तरफ से कहेंगे तो ऐसा उदय आया जीव ऐसा हुआ, वो निमित्त उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, समझ में आता। वहां तो सारे अनुभव वाले पड़ेंगे, जैसे एकेंद्रीय में ऐसी बात होती है, एकेंद्रीय में जो जीव लंबे काल तक पड़ा रहता है तो जो सारा अनुभव घटाता 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 चला जाता है, अब ऐसा जीव पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ तो उसके उदय में कहां उत्कृष्ट अनुभव है, फिर भी जीव उत्कृष्ट कषाय में परिणम सकता है तो उदय के आदि तो नहीं परिणाम होगा, ख्याल में आती है ना। होता ही है ना, उसकी सत्ता में पड़े हैं सारे, परंतु उदय किस रूप से कहलाएगा, तो हम कहें ये तो मंद ये मिथ्यादृष्टि मंद है और इसका तीव्र अनुभव का उदय है, हम कहते शैल वाले के उदय चल रहा है तो उसके तो उपदेश भी सुनने का लायक नहीं है, वो ऐसा कहते हैं कि नहीं, बहुत तीव्र मिथ्यादृष्टि है। तीव्र मिथ्यादृष्टि किसको कहते हैं, अधिक परमाणु फिरते इसलिए नहीं कहते, किस अनुभव रूप से उदय आता है उसको कहते हैं, जीव स्वयं तीव्र मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है तो हम कहेंगे तीव्र मिथ्यात्व का उदय हो रहा है। प्रत्येक निषेक में सभी अनुभव पड़े हैं ये कहना चाहते हैं, परंतु उदय उसी का कहलाएगा ना, कि जिस रूप उदय वाला निषेक की बात अलग है, सत्ता में किस रूप पड़े हैं और उदय वैसा ही कहेंगे जैसे जिस रूप जीव के वहां जैसे परिणाम चल रहे हैं,
परिणाम हो जाता
है। अभी क्या होता है, जीव जब तत्व विचार में लगता है, ये प्रायोगलब्धि में पंचलब्धि में हमने देखा था, जीव तत्व विचार में हो रहा है तब क्या हो रहा है उसके अनुभव, सभी ज्ञानावरणादि सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभव प्रति समय अनंत गुणाहीन होकर उदय तो उसका अनंत गुणाहीन होना यानी क्या हुआ, अभी ज्ञानावरण का भी हीन हो रहा है तो उसका ज्ञान भी खिलेगा कि नहीं खिलेगा, अभी उसका चारित्र मौन्य भी हीन होकर उदय में आया तो उसका शुभ रावण उसकी विशुद्धि बढ़ेगी बढ़ेगी, उसी को हम विशुद्धि लब्धि कहेंगे, वो सभी जो जो अप्रशस्त है सारे हीन अनुभव होकर उदय में आ रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सब संयोग सुधार लेंगे, बाद में हम तत्व सीखेंगे, बाद में विचार करेंगे, अरे आप इसमें लग जाओ ना ये तो बाकी संयोग उसके अधीन है, वो जो होना है होने दो, तो हम तो सब बाहर का कंट्रोलर बन के सबके संयोग पहले सुधारो फिर हम स्वाध्याय में आएंगे। बच्चा जरा बच्चा व्यापार धंधा सुधारेगा करेगा फिर हम निवृत्त है फिर हम आ जाएंगे, कोई कहते बच्चे की शादी कर देंगे बहू आएगी घर संभालेगी हम निवृत्त ही है, नहीं कोई नहीं होते प्रवृत्ति बढ़ जाती है क्या अभी बहू नहीं, कोई डॉग का बच्चा जो बच्चे का बच्चा हो जाता है और क्या होता है यहाँ का मुंह और बढ़ता है, वो बच्चा कुछ नहीं करता कि मुझे ले लो करके। हाँ चलो अपनी बात वो वाली नहीं होती, यहाँ जो हम देख रहे थे अभिभाग प्रतिच्छेद ने शक्ति वर्ग ने कर्म एक एक कर्म परमाणु को वर्ग कहा, जिनमें जिनमें समान अभिभाग प्रतिच्छेद है ऐसे वर्गों के समूह को वर्गणा कहा, एक एक अभिभाग से बढ़ती हुई वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहा, एक एक से बढ़ती हुई बीच में गैप होकर फिर शुरू होते हुए दूसरा स्पर्धक तीसरा स्पर्धक चौथा स्पर्धक, वर्गणाओं में भी ऐसी रचना होती है जहां जाकर वर्गणा के परमाणु आधे हो गए वहां गुणहानि वो अनुभाग वाली गुणहानि कहेंगे, वो जुदी वो गुणहानि वगैरह उसकी बात अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि स्पर्धक ही अनंत होते हैं, स्थिति में तो एक एक समय के डिफरेंस से हमने असंख्यात निषेक बनाए थे, क्योंकि 60,000 वर्ष के बाद शुरू हुए और 70 कोड़ा कोड़ी सागर में तो असंख्यात ही समय होते हैं, परंतु अनुभाग भी इतने डिफरेंस है कि एक स्पर्धक में अनंत वर्गना और ऐसे स्पर्धक भी अनंत होते हैं और एक एक वर्गना में परमाणु भी अनंत है। सब अनंत की बात है। आप क्या करोड़ों और अब्जों की लेके बैठे हो? मैं तो कहती आप जिनागम सीखो, हम तो असंख्यात और अनंत में डील करते हैं, हम ये आपकी संख्या उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं आता। आप तो कहते क्या जगह के भाव इतने बड़े हैं, ऐसा बड़ा वैसा बड़ा, हम तो क्या कह रहे हैं, 1 करोड़ों में अभी दूर उड़ रहे हैं। अभी जो ध्यान देते 181 पेज निकालना, 181 पेज देखो, शुभ प्रकृतियों 163 की टीका नीचे, शुभ प्रकृतियों हमने देखा था घाती सारे अशुभ है, अशुभ नहीं अप्रशस्त है, अघाती में दो दो वेद थे, तो शुभ प्रकृति अर्थात साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों का विशुद्ध परिणामों से तीव्र रहने उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। हमने देखा ना ऊपर के गुण स्थानों में उसका अनुभव ज्यादा बंदेगा, तथा अशुभ प्रकृतियों अर्थात असाता वेदनीय आदि अप्रशस्त कर्मों प्रकृतियों का संक्लेश परिणामों से तीव्र अनुभाग बंद होता है, जिसको हम उत्कृष्ट अनुभाग बंद कहते हैं। तीव्र रहने अनुभाग उत्कृष्ट बंद, तो अनुभाग उत्कृष्ट असाता वेदनीय का उत्कृष्ट मिथ्या दृष्टि संकोच वाले को होगा और साता वेदनी का उत्कृष्ट वो दसवें वाले को ज्यादा होगा। पुनः विपरीत इन अर्थात शुभ प्रकृतियों का संकलेश परिणामों से और अशुभ प्रकृतियों का विशुद्ध परिणामों से जघन्य अनुभाग बंद होता है। आप कहेंगे विशुद्ध परिणामों में अशुद्ध प्रकृतियां बंदेगी नहीं, अशुभ प्रकृतियां जहां जो बंधने योग्य है, जैसे आठवें गुण स्थान में उपधातु नाम की प्रकृति बन रही है वो अप्रशस्त है, उसका वहां जघन्य अनुभाग बंधेगा और बाकी जो वहां बंध विच्छित होती है उसका तीव्र अनुभाग बंधेगा। ख्याल में आते नहीं, प्रशस्त और अप्रशस्त में हमको भेद करना है। प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध कहां होगा? उत्कृष्ट विशुद्धि में। और अप्रशस्त प्रकृतियां जो पाप प्रकृतियां उनका उत्कृष्ट अनुभाग कहां बंधेगा? संकलेश में। ये तो रूल है यहां पर। इस तरह सब प्रकृतियों का इस तरह अनुभाग बंध जानना, पेज नंबर 182, वहां मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम जानना, विशुद्ध किसको कहना? मंद परिणाम, मंद कषाय, तीव्र कषाय रूप संकलेश परिणाम जानना। अब आगे बढ़ते, साता वेदनी आदि 42 प्रशस्त प्रकृतियां है, हमने गिनी थी पहले, निकालो पेज नंबर 81, क्योंकि बहुत काल बीता ना अभी वो देख के। 81 पेज पर आपके पुस्तक में चार्ट बनाए, वहां पर पेज नंबर 81 देखो, ये साता वेदनी ये प्रशस्त प्रकृति है, वेदनी देखो घाती को तो लेना ही नहीं कल्चर, अघाती में ही सोचना है अभी। अघाती के मूल प्रकृति तो चार है, कौन सी? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। तो वेदनी में साता वेदनी प्रशस्त है, आयु में 3 आयु प्रशस्त है, अभी उच्च गोत्र भी प्रशस्त है। अब नाम कर्म को गिनाएंगे तो मनुष्य गति देवगति दो गति लेना और उन्हीं के देव अनुग्रह भी लेना, जाति में पंचेंद्रिय जाति लेना, पांचों शरीर नाम कर्म लेना है, ये पांचों शरीर लेने, औदारिक शरीर नहीं, औदारिक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर, वो सारे शरीर नाम कर्म लेना है, बंधन नाम कर्म और संघात नाम कर्म सभी अंग, पांचों शरीर नाम कर्म प्रशस्त है। पांचों बंधन वो तो शरीर जो नाम है, औदारिक बंधन, वैकृत बंधन, ऐसे वो बंधन नाम कर्म, संघात नाम कर्म भी ऐसे 5 है, 3 अंगों पांग है, औदारिक का, वैकृत का और आहार का। शुभ जिसको कहेंगे प्रशस्त स्पर्श रस गंध वर्ण,
अशुभ में
वो अशुभ में की नहीं है ना दोबारा। अभी प्रशस्त की बात है, प्रशस्त स्पर्श रस गंध वर्ण, जब अप्रशस्त गिनेंगे वहां पर भी अप्रशस्त स्पर्श रस गंध वर्ण गिनेंगे, वो दोनों बनती है।
भी दोनों की एक साथ होगी।
हाँ, दोनों की एक साथ होती है, क्योंकि देखो ये हमारे यहाँ स्वाध्याय में महाबंध में बहुत बात चल रही थी, वहाँ बहुत विस्तार से बात है, तो यहाँ जम नहीं रहा था वो प्रशस्त और अप्रशस्त कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो उसमें जो जो कोई चीजें बताई थी उसकी कुछ बात समझ में नहीं आ रही। दो तीन दिन बहुत 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 उस पर अपना डिस्कशन चला, परंतु बाद में ये बात ख्याल में आई कि एट ए टाइम प्रशस्त भी बनती है और अप्रशस्त भी बनती है, दोनों बनती है हर एक को हर समय। यानी जब ये बात ख्याल में आ गई तब वो जो बुद्धि थी वो सुलझ गई। तो दो तीन दिन तक ये इतना चला कि रात को 2-3 बजे ये बुद्धि सुलझ गई, तब जाके फिर स्वाध्याय में हमने चर्चा की, तो फिर बस जो सब नहीं जम रही थी बात वो सब जम गई। हाँ क्या वो प्रतिपक्ष वाली नहीं है, दोनों बनती है, तो वो नहीं है, है दोनों, वो एक प्रशस्त समय लेते एक अप्रशस्त समय लेते, पर बनती दोनों है। आठवें गुणस्थान में भी दोनों बन जाएगी, प्रशस्त भी अप्रशस्त भी, प्रशस्त का अनुभव ज्यादा बन देगा, अप्रशस्त का अनुभव अति मंद बन देगा, तभी ये बात सुलझ सकती है।
तो महाबंध का विषय है, यहाँ तो इतना है डिटेल,
यहाँ नहीं है डिटेल, और यहाँ उसका कि उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था हमको, मतलब क्योंकि चर्चा बहुत हुई हमारी, हमारे यहाँ स्वाध्याय में बहुत चर्चा हुई उसकी, परंतु उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। जब ये बात ख्याल में आई तब उसके बराबर फिट हो गया सब जगह उसके, यानी फिर दोबारा उसको दोहरा के सब जगह जांच लिया कि ये बराबर है कि नहीं है। देखो ये 20 इधर भी लेना है, प्रशस्त में भी और अप्रशस्त में भी लेना है। समचतुरस्य संस्थान वज्रषभ नारायण सहन नगुर लघु परघा कछुआ सातक बुद्धि और प्रशस्त व्याहति त्रसादि 12, वो जो युगल सब ले लेना, उसी के अभेद करेंगे तो हम उसको 42 में गिनेंगे। ऐसे अप्रशस्त प्रकृतियां उसमें तो 47 तो वही गिननी है, बंद में तो कम गिननी है 2, है ना, और बाकी जो है ये 47 तो वहां गिननी है, और अतः तभी निज गोत्र और बाकी आयु में नरकायु और बाकी अप्रशस्त जो नाम कर्म की वो जो यहाँ छोड़ी वो वहां ले लेना, इस तरह से। यानी वहाँ बंदरूप अभेद में बंदरूप 82 होती है और 84 होती है। अभी आना अपने पेज पर 182 पर थे हम, 182 पर थे। देखो सांता वेदनी आदि 42 प्रशस्त प्रकृतियां जो अभी हमने की है, उनका तीव्र अनुभाग सहित बंध उत्कृष्ट अर्थात तीव्र विशुद्धता गुण जिसके पाया जाता है ऐसे जीव के होता है। इसमें से जो प्रशस्त प्रकृति जहां तक बंधेगी शपथ वगैरह की, वहां उसके तीव्र अनुभाग उत्कृष्ट अनुभाग बंध तथा असाता वेदनीय आदि 82 अप्रशस्त प्रकृतियां, 84 हमने गिनी थी उसमें से 2 बंध योग्य नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनका उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम के धारक मिथ्या दृष्टि के तीव्र अनुभाग सही बनती है। यहाँ वर्णादि 4 शुभ रूप प्रकृतियां प्रशस्त प्रकृतियों में गिनी है और वर्णादि 4 अशुभ रूप प्रकृतियां अप्रशस्त प्रकृतियों में गिनी है, दोनों जगह इनका ग्रहण किया है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि वो प्रतिपक्ष बनती है एट ए टाइम बनती है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, परंतु वो वहां प्रूव हो गया वर्णा। ऐसा नहीं कि जब अप्रशस्त बनती तो प्रशस्त नहीं बनती, ऐसा वहां नहीं हो रहा था, और यहाँ पर भी प्रतिपक्ष में इसको नहीं लिया है, दोनों बनती है टाइम। आगे नीचे उन 42 प्रशस्त प्रकृतियों में आतप उद्योग मनुष्यायु तिर्यंचायु का तीव्र यानी उत्कृष्ट अनुभाग बंधत्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के होता है। देखो क्योंकि आतप और उद्योत सम्यक दृष्टि को नहीं बंधेगी तो मिथ्या दृष्टि को बंधेगी, परंतु यह है शुभ प्रकृति तो मिथ्या दृष्टि में जब विशुद्ध होगा तब उसको बंधेगी, यथा योग्य विशुद्धि समझेगी, क्योंकि अति विशुद्धि में तो वो तीर इंच गति बांधेगा ही नहीं, इसलिए यथा योग्य में समझना जहां जो बंध योग्य उसके परिणाम योग। मनुष्यायु तीरियंचायु को क्यों कहा, मनुष्यायु तीरियंचायु तो देव भी बांधते हैं, परंतु वो तीन पल्ले वाली जो आयु बांधने वाला तो मनुष्य और तीरियंचायु उसके साथ उसका अनुभव भी ज्यादा बने, ये कहना चाहिए, इसलिए उसको विशुद्ध मिथ्या दृष्टि कहा। अवशेष 38 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंध विशुद्ध सम्यक दृष्टि के होता है, यानी सम्यक दृष्टि जिन प्रकृतियों को बांध रहा है उनकी विशुद्धि अधिक होगी तब उनका तीव्र अनुभाग बंध होगा। अब उसमें से बता रहे हैं हम पर 183 पेज पर सम्यक दृष्टि के 38 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंध कहा, 42 प्रशस्त में से 4 उन्होंने अलग गिनाई और बाकी के सम्यक दृष्टि को बताया। उनमें से मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी औदारिक शरीर औदारिक अंगों का वज्र नारा सहन इन पांचों का तीव्र अनुभाग बंध। अब चौथे गुणस्थान में इनको बांधने वाले कौन है, हमने देखे थे देव और नारद की समय दृष्टि, मनुष्य समय दृष्टि देवगति को बांध रहे वो इनको नहीं बांध रहे, हमने उसके देखे थे। तो इनका तीव्र अनुभाग यानी उत्कृष्ट अनुभाग बंध कौन करेगा, तो चौथे गुणस्थान में जिसकी विशुद्धि ज्यादा होगी वो देव या नारद। ऐसा कौन होगा जो चौथे गुणस्थान में भी विशुद्धि मैक्सिमम है, हाँ विसंयोजना वाला, वहां ऐसा नहीं कहा कि सौधर्म वाला है कि भवनवासी वाला है कि ऊपर की सर्वासिद्धि वाला, ऐसा नहीं कहा, वो लेशा कौन सी उसके अनुसार नहीं कहा, तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला। ऐसा क्यों कहते हैं कि जैसे जब प्रथम मोक्षम होता है तो तीन कर्म परिणाम होते हैं, या श्रेणी चढ़ने में तीन कर्म परिणाम होते हैं, दर्शन होने की क्षपना करने में भी तीन कर्म परिणाम होते हैं, ऐसे ही चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव वेदक समय दृष्टि है वो तीन कर्म परिणाम करता है, तो वहां अनंतानुबंधी की विसंयोजना होगी। अनंतानुबंधी के सत्ता में जितने अंतर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण परमाणु पड़े हैं वो सारे के सारे अन्य अप्रत्याख्यानादि रूप होकर संक्रमित होकर नष्ट होते एक अंतर्मूर्त में, वहां उसकी विशुद्धि बहुत ज्यादा है, चौथे में वो मैक्सिमम विशुद्धि वहां पाई जाए। और इनका बंध मनुष्य नहीं कर रहे देवनार की कर रहे, इसलिए वहां दर्शन मुनि का क्षपणा करने वाला नहीं लिया, चौथे वाला मनुष्य भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना या क्षपणा भी करता है उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी, परंतु वो तो देवगति बांध रहा है, इसलिए इनके लिए देव और नार की अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले जीव उनको यह उत्कृष्ट अनुभाग से ही बंधेगी, ये उसका कथन है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य चौथे वाले के इसलिए ज्यादा है कि ये बांधने वाले जीव कौन है, तो देव है या नार की समय दृष्टि है। उन चौथे गुणस्थान वाले देव या नारकियों में विशुद्धि कब मैक्सिमम होगी, जब वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेंगे तब, ये उसका कथन है।
नारकियों में भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर ले इसे विशुद्ध परिणाम,
ऐसे सातवें नरक के नारकी में भी होते जिसकी गुणश्री यहाँ के मुनियों से भी ज्यादा होती, ख्याल में आते ना। देवायु का तीव्र अनुभाग सहित बंध, देखो यहाँ देवायु को लिया, देवायु का मैक्सिमम स्थिति बंध किसको किसको लिया था हमने, 33 सागर की देवायु बांधने वाले मुनिराज बांधते ना, कहाँ लिया था, छठे में के सातवें में, छठे में, क्योंकि उसकी आवाज़ इंक्लूड कर दी थी। अब यहाँ क्या लिखते, देखो देवायु का तीव्र अनुभाग सहित बंध अप्रमत्त गुणस्थान वर्ती करता है, छठे से सातवें की विशुद्धि ज्यादा है, छठे वाला भी 33 सागर का बंध कर रहा है, सातवें वाला भी 33 सागर का बंध कर रहा है, आबादक की अपेक्षा हमने छठे वाले को स्थिति बंध ज्यादा कहा था, परंतु वहां अनुभाग कितना बंधा है, समान बन रहा है, परंतु समान अनुभाग समान नहीं बन रहा, अनुभाग सातवें में ज्यादा बंधेगा, स्थिति उतनी की उतनी बंध रही, कितनी 33 सागर, अनुभाग कब ज्यादा होगा, जहाँ विशुद्धि ज्यादा होगा, इसलिए सातवा वाला सातवें गुण स्थान में। छठे में उसने देवायु बांधना चालू किया, वो सातवें में आ गया, सातवें में उसकी सातवें में एंटर होता है तो उसकी विशुद्धि बढ़ गई। तो वहां जहां विशुद्धि ज्यादा है वहां उसका देवायु का बंद करने वाला जीव उसका अनुभाग भी ज्यादा होगा, ये यहाँ के नाम।
अनुभाग से क्या,
बस जो विशुद्धि में तीव्र अनुभाग बनता है बस इसी इतना ही उसका अर्थ है, उसके उसके फल में क्या होता है पता नहीं। यानी उत्कृष्ट स्थिति है जो शुभ आयु की, उसमें उसका उत्कृष्ट अनुभाग भी काम करता है, इतना उसका। अवशेष 32 प्रकृतियों को ये अभी मनुष्य गति संबंधी कुछ लिए, देवायु वगैरह लिए, बाकी को शपक श्रेणी वाला जीव तीव्र अनुभाग सहित बांधता है। हमने देखा जहां जिसकी बंध विच्छित्ति होती है, अब आठवें में जो बंध विच्छित्ति होती है किसकी, प्रशस्त प्रकृतियों की, निद्रा प्रचलन अप्रशस्त उसको बस, जहां तीस की बंध विच्छित्ति होती है, तीस में से एक उपघात है उसको छोड़ो तो 29 बची, और 29 और सादा वेदी यशस्वी उच्च पत्र जो 10वें में बनती है उनकी वहां पर उसको उसका उत्कृष्ट अनुभव होगा। अपनी बंध विच्छित्ति प्रशस्त प्रकृतियां जहां बंध विच्छित्ति होती है श्रेणी में शपक श्रेणी में वहां उनका अनुभव उत्कृष्ट बनता है, ये बात यहां बताना चाहते हैं। इसके लिए हमने वो बंध विच्छित्ति देखी ना पहले, वो अभी यहां काम आती है, क्योंकि कहां कौन सी प्रकृतियां बंध से विच्छित्ति होती है, जहां प्रशस्त प्रकृतियां बनती है और शपक में अंतिम जहां बंध है वहां विशुद्धि ज्यादा है इसलिए उसका अनुभाग बंध ज्यादा है। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध ऊपर के गुणस्थानों में ज्यादा है और प्रशस्त प्रकृतियों का स्थिति बंध वहां मिनिमम है। साता वेदनीय की मिनिमम स्थिति 12 मुहूर्त बन रही है 10वें के अंत में, वहीं पर साता वेदनीय का उत्कृष्ट अनुभाग बंध होगा। ख्याल में आई ना बात, आपका ये प्रश्न है कि सत्ता में पड़े पड़े जिसका बंध रुक गया है क्या सत्ता में पड़े पड़े उसका अनुभाग बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। परंतु अभी वेदनी बंध रही है और सत्ता में पहले बंधी हुई वेदनी पड़ी थी, नीचे के गुणस्थानों में बंधी हुई वेदनी पड़ी थी, अब वो 10वें के अंत में जाकर वेदनी का बंध किया, कितने का किया, स्थिति कितनी बांधी, 12 मुहूर्त की बांधी, अनुभाग कितना बांधा, मैक्सिमम बांधा। उस समय सत्ता में पड़े हुए सारदा वेदनी के परमाणु मैक्सिमम अनुभाग वाले उत्कर्षण अनुभाग का उनका होगा, उनका होगा, परंतु उनके होने के लिए कंडीशन नए बंध की है, बंध रुकने के बाद नहीं होता है, क्योंकि 8 मुहूर्त का बंधा हुआ 8 मुहूर्त में उदय में आकर खिल जाने वाला है तो उसका तो उत्कृष्ट अनुभव है, तो पहले उत्कृष्ट अनुभव का उदय होगा और केवली के बाद में हीन अनुभव का उदय होगा क्या? सप्ताह में जो पड़े हैं उन्होंने अपना अनुभव बढ़ा लिया और उसका उदय चलेगा बाद में, अनुभव का भी उत्कर्षण होता है परंतु उसके लिए नए बंद की कंडीशन है। अब यहाँ देखते हैं आगे,
जिस समय बंद हुआ उसी साथ बाकी सप्ताह में पड़े उस समय उसका अनुभाग बढ़ जाएगा।
हाँ, अनुभाग बढ़ने और वो सभी में नहीं, ये था कि कुछ परमाणु में सभी के सभी नहीं कर रहे, प्रति समय वहां बंद है तो प्रति समय कुछ ना कुछ परमाणु का अनुभाग बढ़ते चले जाएगा।
पुराने
सत्ता में पड़े हुए पुराने असाता भी साता रूप होते चले जाएंगे, नया बंध साता का है तो असाता भी साता रूप हो गए।
सारे के सारे या मुख?
बहुत सारे, अभी वो शपक श्रेणी में जहां अभी कहां कितने प्रमाण में होते हैं, गुणित प्रमाण में होते हैं कि थोड़े प्रमाण में होते हैं, वो गुण स्थान के अनुसार उसका वर्णन है।
ये साथ
नहीं बनते, साता असाता एक साथ कभी नहीं बनते, कहां बन रहा है, नहीं बनता है। हम संक्रमण की बात की, जब साता बन रहा है तो असाता जो सत्ता में पड़े हैं वो कुछ साता रूप टर्न होते हैं उसको संक्रमण कहते हैं, या जो साता ही पड़ी थी उसका अनुभाग भी बढ़ता है।
तो
महाबंध में साता असाता की बात नहीं की थी, प्रशस्त अप्रशस्त वर्णादि की बात की थी एक साथ बंधने वाले की। आपका प्रश्न साता असाता के बारे में, वर्णादि के बारे में, वर्णादि प्रशस्त और अप्रशस्त है वो एक साथ बनते हैं, वो प्रतिपक्षी नहीं है। जैसे स्थिर बंधेगा तो अस्थिर नहीं बनता, दुर्भग बंधेगा सुभग नहीं बंधेगा, वैसा उनका नहीं है। अभी वो गोरा शरीर भी, मुंह तो गोरा है, दांत भी गोरे हैं और बाल काले हैं। आपने उसको अप्रशस्त बना दिया, हम क्या करें? कहीं कहीं काले को अच्छा मानते हो गए हैं। अनेक वर्ण होते हैं, ये बाहरी की चमड़ी के वर्ण बता रहे हैं, अंदर क्या क्या हो रहे होंगे। अंदर भी आतर ही है, लिवर है, हार्ट है, सब में कलर है कि नहीं, खून में सब जगह कलर पड़ा है कि नहीं पड़ा, वर्ण सब जगह, वर्ण रस गंध स्पर्श सब पूरे शरीर के परमाणु में, उसमें से कुछ इस तरह से हो गए। अभी उस जाति के परमाणु का ग्रहण हो रहा है, उस नाम कर्म का उदय में वैसे वैसे परमाणु का ग्रहण हो रहा है। वो तो कहने की बात है, ये हमारे लिए पुद्गल तो पुद्गल है, उसमें क्या शुभ और क्या अशुभ है, उन्होंने मान लिया उसको।
लेकिन फिर भी आचार्य
देव ने करेगा, जैसे हम इसके नाम देते हैं लेशम के, वैसे वर्णों के भी करते हैं, उसके भी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। हाँ, अभी हम यहाँ पेज नंबर 183 पर आए थे। नीचे का करेगा 82 अप्रशस्त प्रकृतियां जो हमने अभी 81 पेज पर गिने थे। आतप उद्योत मनुष्य ये तो प्रशस्त है, परंतु मिथ्या दृष्टि इनका तीव्र अनुभव बांधता है। इन 86 का मिथ्या दृष्टि के तीव्र अनुभव सहित बंध है। उनमें से मिथ्या तो गुणस्थान में जिन 16 प्रकृतियों की विच्छित्ति कही थी, ये याद है ना, मिथ्या तो मुंडक संस्थान वगैरह वगैरह, उनमें से सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त आदि अंतिम 9 प्रकृतियों को संक्लेश परिणाम युक्त मनुष्य और तिर्यंच ये उत्कृष्ट अनुभव से ही बांधता है, क्योंकि देव तो इनको बांधते ही नहीं है, इसलिए मनुष्य तिर्यंचों को इसके ये उत्कृष्ट अनुभव से ही बांधेंगे। मनुष्यायु तिर्यंच आयु को विशुद्ध मनुष्य और तिर्यंच तीव्र अनुभव से ही बांधता है, क्योंकि ये भोग भूमि संबंधी आयु है, इसीलिए लेना है इसको। तीन पल्ले वाली उसके साथ उसका तीव्र अनुभव होगा। एकेंद्रिय स्थावर इन 2 प्रकृतियों का संक्लेश परिणाम का धारी और आतप का विशुद्ध परिणाम का धारी देव अपनी आयु के 6 महीने अवशेष रहने पर तीव्र अनुभव बांधता है, क्योंकि एकेंद्रिय और स्थावर ये अशुभ प्रकृतियां हैं, आतप ये शुभ प्रकृति है, परंतु एकेंद्रिय के साथ ही बनती है। अब जो एकेंद्रिय संबंधी आयु भी बांधता होगा और वो संतुष्टि और संकलेश में मरने वाला 6 महीने में वगैरह वगैरह जो बातें आती हैं, तीव्र संकलेश में ये प्रकृतियां उसको बन रही है। अब आगे 184 पर, 7वें नरक में उपशम सम्यक्तों के सन्मुख हुआ विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव, यानी वह अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय वाला है, समय को प्राप्त करने जा रहा है। 7वें नरक की क्या विशेषता देखी हमने, जब तक मिथ्या दृष्टि पूरे अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक तिर्यंच गति का ही बन चले, अन्यत्र जो है प्रायोगिक लब्धि में तिर्यंच गति का बंध रुक जाता है। हमने पहले देखा ना पंचलब्धि के प्रकरण में, प्रायोगिक लब्धि में तिर्यंच गति का बंध रुक गया, फिर वो मनुष्य गति या देव गति का वगैरह वगैरह ऐसे चलेगा। 7वें नरक में अन्य जो नारकी है ना, वो सम्यक के पहले ही मनुष्य गति का ही बंध चालू करेंगे, पर ये 7वें नरक का नारकी कैसा है, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक तिर्यंच गति नीच गोत्र उसका बंध करेगी, ये कहना
चाहते हैं।
हाँ, करण के अंतिम परिणाम तक सम्यक होने पर वो मनुष्य गति बांधेगा, अंतिम समय तक तीनों से गति बांध रहा है। तो उसमें जो उद्योग बांध रहा है, उद्योग प्रशस्त प्रकृति है, तो उसके लिए उसको तीव्र अनुभव बनेगा उद्योग का, क्योंकि अति विशुद्ध के उद्योग प्रकृति का बंध नहीं होता। अति अन्य मार्गों को नहीं हो रहा, इसको हो रहा है अति विशुद्धि में भी, क्योंकि वो सागर नरक की ऐसी स्वभाव से ऐसी वहां की प्रकृतियां होती है। अब बाकी जो है सुपाटिका सहनन तीरंज गति तीरंज गत्यानुपूरी प्रकृतियों को देव और नार की मिथ्यादृष्टि जीव तीव्र अनुभव सहित बांधते हैं, और बाकी 68 प्रकृतियों को चारों गतियों के संकलेश परिणाम के धारक मिथ्यादृष्टि जीव तीव्र अनुभव सहित बांधते हैं। अभी हम जगन्य अनुभव की, पहले तीव्र उत्कृष्ट अनुभव की बात की, प्रशस्तों में तीव्र अनुभव ऊपर की स्थान, और प्रशस्तों में तीव्र अनुभव मिथ्या दृष्टि। अब ये यथायोग्य उसमें जो कोई डिफरेंस है उन्होंने बता दिया।
जो पहले आपने बताया कि वो देव विशुद्ध परिणाम करके आसक्त
कहां, पेज नंबर 183। हाँ देखो, आतप प्रकृति कब बनती है, जो जीव पृथ्वी का एक बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त का बंध कर रहा है उसी के साथ आतप बन सकती है। तो देव जब बांध रहे एक इंद्रिय और स्थावर प्रकृति, तब आतप का बंधन हो सकता है, परंतु देव जब अति विशुद्ध है तो एक इंद्रिय जाति क्यों बांधेंगे। एक इंद्रिय बांधने योग्य तो संकलेश है, परंतु उस संकलेश में वो आतप बांधने योग्य विशुद्धि भी है, ये कहना चाहते हैं। और ऑप्शन क्या है उसमें, पंचे इंद्रिय और एक इंद्रिय, देव सारे देव दो ही तो गतियां बांधते हैं, दो ही जातियां तो बांधते हैं, वो भी सनत कुमार महिंद्रा तक। ये कहते हैं हमें ऑप्शन बहुत है, हम एक इंद्रिय जाति से पंचे इंद्रिय जाति तक सब कुछ बांध सकते हैं। अभी जगन्य अनुभव की बात करेंगे। उत्कृष्ट अनुभव के लिए तो हमने देख लिया कि प्रशस्त प्रकृतियों का ऊपर के उन्न स्थानों में उत्कृष्ट अनुभव यानी तीव्र अनुभव, अप्रशस्त प्रकृतियों का संकलेश वाले को तीव्र अनुभव। अभी उल्टा सोचेंगे, अब जगन्य अनुभव किसका कब होगा वो सोचेंगे। जिनके जगन्य अनुभव बंद होते हैं उनका कथन करते 170 की टीका। अप्रशस्त वर्णादि 4, उपघात, ज्ञानावरण 5, अंतराय 5, दर्शनावरण 4, निद्रा प्रचला, हास्य रति भय गुप्सा। जब जब एक एक नाम ले रहे तो ये इमेजिन करना कहाँ कहाँ बंध विच्छित्ति हो रही है। अप्रशस्त प्रकृतियां है, इनका जगन्य अनुभव कहाँ होगा, जहाँ इनकी बंध विच्छित्ति होती है। पढ़ते पढ़ते ये अपने विचार चलने चाहिए, तो फिर आगे का वाक्य पूर्ण होने के पहले अपना उत्तर तैयार हो जाता है। पुरुष वेद संज्वलन 4, इन 30 प्रकृतियों की अपनी अपनी बंध की विच्छित्ति जहां होती है वहां इनका जगन्य अनुभाग बंध होता है। अभी यहां देखेंगे अप्रशस्त वर्णादि 4 कहां बंधेगी, ये सिद्ध हो रहा है ना, उसका जगन्य अनुभाग 8वें में हो रहा है, यानी यहां वो बंध रही है और यहीं पर प्रशस्त बंधेगी तो उसका अनुभाग उत्कृष्ट होगा। उपघात जो 30 की बंध विच्छित्ति होती उसमें एक है उपघात। ज्ञानावरण का 5 का बंध विच्छित्ति कहां पर है, 10वें में बनती, वहां उसका मिनिमम अनुभाग बंधेगा। अंतराय 5 वहीं पर 10वें में, दर्शनावरण 4 भी वहीं पर, निद्रा प्रचला कहां बंध विच्छित्ति होती, 8वें के पहले भाग में, हास्य रति भय जुगुप्सा 8वें के लास्ट में, पुरुष वेद 9वें के पहले भाग में, संज्वलन 4 में, क्रोध मान माया लोभ 9वें में। इनकी बंध विच्छित्ति जहां होती वहां इनका जगन्य अनुभाग बंध होता है, इसका अर्थ समझ में है ना। हमने बंध विच्छित्ति पहले पढ़ी थी, और ये सारी कैसी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, वहां इनका अनुभाग मिनिमम बंधेगा, बंध तो है इनका, अनुभव का मिनिमम है। हम आपको हमेशा देखते हैं ना कि हम आप इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, विधान वगैरह कर रहे हैं, तो हमारी घातियां तो बंद ही रही है, तो घातियां सभी पाप रूप ही है, तो उतना पाप तो हर समय बन रहा है ना। अभी हमने 6-6 घंटे इतना सुना इसको, पढ़ा, इसमें बिल्कुल उपयोग लगाया, तो हमारे शुभ भाव हुए, तो शुभ भाव हुए तो कितने कर्म बन रहे थे। आयु को छोड़ो, 7 ही का बंद हो रहा था ना, तो इसमें ज्ञानावरण दर्शन मोहनी अंतराय सभी पाप रूप है, तो इन पाप का बंद हो रहा है इतने काल में भी, तो क्या फायदा? अनुभव बहुत कम बनेगा, क्योंकि बनती तो 10वें तक बनती है, अभी ज्ञानावरण 10वें तक बनती, उसमें क्या करें। मुनिराज को भी बंद रही है, ख्याल में आती है ना बात, उसका बंद करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हम जो अभ्यास करते हैं, हम जो तत्व का विचार करते हैं, वो अपने स्वरूप समझने के लिए, इससे बंद हो जाए और मुझे उसका फल मिले, उसके लिए कुछ नहीं, उसमें अच्छा बंद रही है, पुण्य भी नहीं बंधेगा। ये उत्कृष्ट जाति का पुण्य तो सहज बनता है, और वो पुण्य के लिए कोई नहीं करता है, जो पुण्य के लिए करता है उसको उसका फल भी नहीं मिलेगा। ये सहज रूप से जो तत्व विचार के काल में उत्कृष्ट पुण्य का बंध हो जाता है, उससे हमें कुछ लेना नहीं, हमें क्या फायदा होता है, ये तत्व विचार में हमें अपना स्वरूप स्पष्ट भाषित होता है। अब देखो ये बंध विच्छित्ति, उदय विच्छित्ति, ये सब ये स्पष्ट ख्याल में आता है कि जीव जुदा ही, कर्म परमाणु आते हैं जाते हैं, उनमें जो कुछ क्रियाएं हो रही है वो पूरे जुदे के जुदे है। ये शरीर की रचना होना, ये जो कुछ बन रहा है वो बस सर्व कर्म के उदय के रूप में पुद्गल का पुद्गल में हो रहा है, जीव का उसमें कोई संबंध नहीं है। जीव का तो क्या ज्ञान स्वरूप है, उसके ज्ञान में सब कुछ आ रहा है, तो ये ज्ञान में आया तो मेरा हो गया, उसका मैं हो गया, ऐसा मान लिया उसने, बिल्कुल उत्कृष्ट है। इससे और उत्कृष्टता इतनी दृढ़ता आती है कि बिल्कुल स्पष्ट जुदा नजर में आता है। लोगों को लगता है करना योग का क्या फायदा है, हमें विकल्प तरंग बहुत उठते हैं। क्या कहें, ये भेद ज्ञान में इतना बल मिलता है, बहुत ज्यादा। हमारे बाबू भाई तो ये गुरुदेव के जमाने के, उनसे हम बहुत सीखे हैं पहले से, तो इन्हें द्रव्यान योग के उत्कृष्ट जानकार जिसको कहेंगे, उसमें एक एक उनके वाक्य में कितना, तो वो भी कहते थे आपकी बातें सुने तो यहाँ हमारा और ज्यादा उपयोग उसमें चला जाता है, क्योंकि ये तो सब कोई भी अनुयोग हो उसमें से हमें ये बल मिलता है, कैसे वितरकता निकालनी, कैसे भेद ज्ञान करना, ये तो हमारे ऊपर निर्भर है। ये कर्मों के स्वरूप जाने के लिए नहीं कह रहे, इसमें तो हमें अपनी भिन्नता स्पष्ट ख्याल में आती है। मिश्र योग में शुभ या अशुभ को ये मिश्र योग, ऐसा जहाँ शुभ भी अशुभ भी बनती है उसको मिश्र योग कहेंगे। हम देख रहे हैं ना अभी आखिर में क्या है, कुछ अशुभ प्रकृति अभी तो बन रही है, वो तो इसी को कहेंगे मिश्र योग। शुभ योग यानी जहाँ शुभ प्रकृति, जिस योग के निमित्त शुभ प्रकृतियां बनती है उसमें, ये योग में जो कंपन में कोई शुभ अशुभ ये कंपन नहीं होता है, अभी ये जो क्रियाएं को ले लिया उसमें, उसमें जीव की शुभ भाव को भी ले लेना उसके साथ। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिख दिया है पंडित टोडरमल ने। हाँ देखो यहाँ हम देखते हैं, जगन्य अनुभाग की बात की थी, अभी तो हमने बंध विच्छित्ति की बात देख ली 170 गाथा में, 171 गाथा में अनंतानुबंधी कषाय चांद, इसकी बंध विच्छित्ति कहाँ है, दूसरे में है, परंतु दूसरे वाला जीव कहाँ जाने वाला है, पहले में, वो तो संकलेश वाला जीव समय को से गिर कर आया है, तो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व में भी बनती है, तो मिथ्यात्व में उसका जगन्य अनुभाग कब बनेगा, जब मिथ्या दृष्टि की उत्कृष्ट विशुद्धि होगी, तो मिथ्या दृष्टि की उत्कृष्ट विशुद्धि कब होगी, जब करण परिणाम के अंत समय में है, तो पहले से 4थे में जाने वाला नहीं रहेगा, पहले से 7वें में जाने वाला रहेगा, उसकी विशुद्धि मैक्सिमम है मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा। मैक्सिमम विशुद्धि किसकी है, पहले से 7वें के सन्मुख वाला जीव, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में विद्यमान है, वहां उसका अनंतानुबंधी का बंधन है, मिथ्यात्व तो का भी बंध है। हाँ बिल्कुल, द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग प्रकट नहीं होता, जो द्रव्यलिंगी है वही पहले से सातवें में जाएंगे डायरेक्ट, वो बाकी सब वो कंडीशन है वो कर्म परिणामों की वगैरह वो सब उसमें लागू हो जाएगी। स्त्यान वृद्धि आदि तीन, ये केवल इसमें प्रथमोक्षम वाला ही नहीं समझना, सोक्षम समय दृष्टि भी जो पहले से सातवें में जाता है उसकी भी इतनी शुद्धि होती है अंतिम समय में। कहां से ये मिथ्या दृष्टि है? अनंतानुबंधी मानने वाले की बात चल रही है। पहले से कौन क्षय करेगा? उसकी बात नहीं है, अनंतानुबंधी के बंद की बात चल रही है। अनंतानुबंधी का बंद कौन कर रहा है? मिथ्या दृष्टि कर रहा है। तो उसकी विशुद्धि कब ज्यादा है? मिथ्या तो में कर्म परिणाम मान ले है और यहां से सातवें में जाने वाला जीव है उसकी बात है। वो पहले से सातवें में जाने वाला वेदक समय दृष्टि भी हो सकता है, वेदक के साथ सातवें में जाता है या उक्षम के साथ सातवें में जाता है, दोनों की उतनी विशुद्धि हो सकती है ये कहना चाहते हैं।
चौथे से सातवें में सीधा वेदक?
अरे वहाँ अनंतानुबंधी नहीं है, हम अनंतानुबंधी का बंद करने वाले की बात कर
रहे हैं।
पहले से सातवें में जा सकता है सादी मिथ्या दृष्टि, वेदक के साथ वो है मिथ्या दृष्टि, सौक्षम समय को प्राप्त करेगा सातवें में जाएगा, सौक्षम समय को प्राप्त करेगा, पर वो बांध रहा है अनंतानुबंधी तब मिथ्या दृष्टि है, सातवें में जाएगा तो उसका सौक्षम समय तो प्रकट होगा। स्त्यान वृद्धि आदि तीन, ये भी यहाँ पर भी लेना, बंधे विच्छित्ति भले दूसरे में है परंतु उसका जगन्य अनुभव कब होगा? मिथ्या दृष्टि जब उत्कृष्ट विशुद्धि वाला है, यानी वही सातवें के सम्मुख वाला है। मिथ्यात्व ये आठ, मिथ्यात्व गुणस्थान में, यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में इसका जगन्य अनुभव है वो भी वो सातवें में जाने वाला जीव यहाँ ले लेगा। अप्रत्याख्यानावरण कषाय चार, असंयत में, असंयत में उत्कृष्ट विशुद्धि वाला जीव लेना, यानी जो कर्म परिणाम मानने वाला वो ही ले सकते इसको। चौथे से सातवें में जाने वाला यहाँ ले सकते हैं, कर्म परिणाम करके जाने वाला जीव ले सकते
हैं। हाँ,
प्रत्याख्यानावरण कषाय चार, देश संयत में, ये सोलह प्रकृतियां जो जीव इन गुणस्थानों में यहाँ लिखा है ना, संयम गुण धारण करने के सम्मुख हुआ, पांचवें से सातवें में जाने वाले को प्रत्याख्यानावरण का जगन्य अनुभव करने, ऐसे विशुद्ध जीव के जगन्य अनुभव सहित बनती है। अब आगे का पैराग्राफ कल सुबह पढ़ेंगे, अभी समय हो गया है। पहले से सातवें में जाने वाले पहले में बंधने वाली प्रकृतियों का जगन्य अनुभव, चौथे में बंधने वाले के चौथे से सातवें में जाने वाले और प्रत्याख्यान का जगन्य अनुभव, पांचवें से सातवें में जाने वाले के प्रत्याख्यान आवरण का जगन्य अनुभव, ये कहना, यही उठेंगे अभी। बोलो चौबीस सोलह।